ओम शांति। 15 नवंबर 1989। सभी शांति की शक्ति के अनुभवी बन गए हो ना? शांति की शक्ति बहुत सहज स्व को भी परिवर्तन करती और दूसरों को भी परिवर्तन करती। याद के बल से विश्व को परिवर्तन करते हो। याद क्या है? शांति की शक्ति है ना? इससे व्यक्ति भी बदल जाएंगे तो प्रकृति भी बदल जाएगी। इतनी शांति की शक्ति अपने में जमा की है ना? व्यक्तियों को तो बदलना है, लेकिन साथ में प्रकृति को भी बदलना है। प्रकृति को मुख का कोर्स तो नहीं कराएंगे ना? व्यक्तियों को तो कोर्स करा देते हो, लेकिन प्रकृति को कैसे बदलेंगे? वाणी से व शांति की शक्ति से, योग बल से बदलेंगे ना? तो योग में जब बैठते हो तो क्या अनुभव करते हो? शांति का संकल्प भी जब शांत हो जाए, एक ही संकल्प बाप और आप, इसी को ही योग कहते हैं। अगर और भी संकल्प चलते रहेंगे तो उसको योग नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे फिर? वियोग। बहुत दूर हो गया उससे, थोड़ा पहले। अगर और भी संकल्प चलते हैं, योग में एक ही संकल्प बाप और आप, इसी को ही योग कहते हैं। अगर और भी संकल्प चलेंगे तो उसको योग नहीं कहेंगे, ज्ञान का मनन कहेंगे। तो जब पावरफुल योग में बैठते हो तो संकल्प भी शांत हो जाते हैं, सिवाय एक बाप और आप। बाप के मिलन की अनुभूति के सिवा और सब संकल्प समा जाते हैं, ऐसा अनुभव है ना? समाने की शक्ति है ना, या विस्तार करने की शक्ति ज्यादा है? कई ऐसा कहते हैं कि ना, कि जब याद में बैठते हैं तो और संकल्प बहुत चलते हैं, इसको क्या कहेंगे? समाने की शक्ति कम और विस्तार करने की शक्ति ज्यादा, लेकिन कौन सी शक्ति चाहिए? दोनों शक्ति चाहिए, एक विस्तार को सार और दूसरा सार को विस्तार। जब चाहे जैसे चाहे विस्तार में आने, चाहे विस्तार में आए और समेटना चाहे तो समाने की शक्ति सेकंड में यूज कर सके, इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? फुल स्टॉप। इसको क्या कहते हैं? राज ऋषि। इसको क्या कहते हैं? कंट्रोलिंग पावर, स्वराज्य अधिकारी। इसको क्या कहते हैं? पावरफुल ब्रेक। जब चाहे जैसे चाहे विस्तार में आए, चाहे विस्तार में आए और समेटना चाहे तो समेटने समाने की शक्ति सेकंड में यूज कर सके, इसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। 15 नवंबर 1989। हम शांति की शक्ति के अनुभवी बन, सभी शांति की शक्ति के अनुभवी बन गए हो ना? मुंबई ग्रुप से मुलाकात। शांति की शक्ति बहुत सहज स्व को भी परिवर्तन करती और दूसरों को भी परिवर्तन करती है। याद के बल से विश्व को परिवर्तन करते हो। याद क्या है? शांति की शक्ति है ना? इससे व्यक्ति भी बदल जाएंगे तो प्रकृति भी बदल जाएगी। किससे? शांति की शक्ति से, याद से। इतनी शांति की शक्ति अपने में जमा की है। व्यक्तियों को तो बदलना है ही, लेकिन साथ में प्रकृति को भी बदलना है। प्रकृति को मुख का कोर्स तो नहीं कराएंगे ना? व्यक्तियों को तो कोर्स करा देते हो, लेकिन प्रकृति को कैसे बदलेंगे? वाणी से या शांति की शक्ति से? योग बल से बदलेंगे ना? तो एक है व्यक्तियों को बदलना और दूसरा है प्रकृति को बदलना। तो प्रकृति को कैसे बदलेंगे? प्रकृति को बदलने के लिए क्या चाहिए? प्रकृति को कैसे बदलेंगे अशोक भाई? तो प्रकृति को बदलने के लिए 8 शक्तियों की आवश्यकता है, जिससे प्रकृति बदलेगी। सबसे पहली जिसकी यहाँ पर चर्चा की है, पावर ऑफ साइलेंस, जिसी को बाबा पावर ऑफ योगा, योग बल, जिसी को शांति की शक्ति कहो, पावर ऑफ साइलेंस कहो या योग बल कहो, तो प्रकृति जो बदलेगी वो किस आधार से बदलेगी, पावर ऑफ योगा, योग का बल प्रकृति को परिवर्तन करेगा। दूसरा, प्रकृति को परिवर्तन के लिए चाहिए पावर ऑफ प्यूरिटी, प्यूरिटी का बल, पवित्रता की शक्ति प्रकृति को बदलेगी। तीसरा, पावर ऑफ थॉट, संकल्प की शक्ति। ये तीन मुख्य शक्तियां हैं, योग, पवित्रता और संकल्प। जितना जितना आत्मा योग युक्त होती जाएगी, वो योग की शक्ति प्रकृति को बदलने लगेगी। और प्रकृति जब बदलेगी तब क्या होगा, प्रकृति का बदलना अर्थात प्रकृति का शुद्धिकरण, प्रकृति का परिष्कार, परिष्कार होगा, शुद्धिकरण होगा, प्यूरिफिकेशन होगा। और प्यूरिफिकेशन को संसार वाले क्या कहेंगे, विनाश। तुम्हारे लिए होगा मलुक का शिकार, तुम मलुक हो, शिकारी हो, वो होगा मिरु, मिरु अर्थात जानवर, मिरुआ मौत, जानवर की मौत, मिरु की मौत, और तुम हो मलुक और तुम हो शिकारी, और तुम्हारे लिए क्या होगा, वो शिकार। तो मिरुआ मौत, मलुक का शिकार, उस तरह से प्रकृति का शुद्धिकरण होगा, पावर ऑफ योगा, पावर ऑफ साइलेंस या शांति की शक्ति पहला। दूसरा, पावर ऑफ प्यूरिटी, तुम्हारी प्यूरिटी जितनी जितनी बढ़ती जाएगी प्रकृति शुद्ध होगी। पावर ऑफ थॉट, तुम्हारी थॉट पावर जितनी बढ़ती जाएगी, संकल्प शक्ति, तुम संकल्प जो जो करोगे प्रकृति मानेगी, एकाग्रता होगी तो प्रकृति तुम्हारे संकल्प को मानेगी। चौथा, पावर ऑफ गुड विशेस एंड प्योर फीलिंग, शुभ भावना और शुभ कामना की शक्ति, प्रकृति के प्रति शुभ भावना, प्रकृति के प्रति शुभ कामना, शुभ भावना, वो प्रकृति में परिवर्तन करेगी। पांचवा, पावर ऑफ वृत्ति, तुम्हारी वृत्ति परिवर्तन होगी तो वृत्ति से वायुमंडल, वायुमंडल से वायुमंडल में प्रकृति आ जाएगी। तो पावर ऑफ वृत्ति जो कि पावर ऑफ थॉट से जुड़ी हुई है। फिर है पावर ऑफ सकाश, वाइब्रेशंस, प्रकंपन, सकाश की शक्ति से प्रकृति का शुद्धिकरण होगा। फिर है पावर ऑफ दृष्टि, तुम्हारी दृष्टि की शक्ति से प्रकृति का परिवर्तन होगा। और आठवीं, पावर ऑफ स्पीच, यहां तो बाबा ने कहा है मुख का कोर्स कराओगे क्या, परंतु तुम्हारी स्पीच ही इतनी पावरफुल हो जाएगी एक समय में, जब बाकी सारी शक्ति आ जाएगी तब तुम जो बोलोगे वो प्रकृति मानेगी, प्रकृति का शुद्धिकरण। आठवीं जो पावर है वो पावर ऑफ स्पीच से भी है, क्योंकि पुराने जमाने में जो लोग श्राप देते थे या वरदान देते थे या फिर चमत्कार करते थे, प्रकृति को आदेश करते थे, बारिश तो बारिश हो जाती थी। दिखाए ना अर्जुन, कर्ण मंत्र पढ़ते हैं, धनुष बाण लेकर आकाश की ओर छोड़ते हैं, तो कुछ कुछ होता है। तो प्रकृति को आदेश कर रहे हैं, प्रकृति को वश में कर रहे हैं, प्रकृति को चेंज करने की पावर उनमें है। व्यक्ति को पत्थर बना देते हैं, पत्थर जड़ है, प्रकृति को कंट्रोल करते हैं। वो जीसस क्राइस्ट नाव में बैठा है, तूफान आया, वो बोलता है, आदेश करता है प्रकृति को, पीस बी स्टिल, शांत हे प्रकृति, शांत हो जा, पीस बी स्टिल, तो शांत हो जाती है प्रकृति। दिखाए कृष्ण जयद्रथवत वध, सूरज को बोलता है क्या, क्या बोलता है शिशुपाल, जयद्रथ शिशुपाल तो होता है, जयद्रथ उसको क्या बोलता है, नीचे जा, तो सूरज नीचे चला जाता है, फिर बोलता है अब ऊपर आ जाओ, फिर बोलता है ये रहा जयद्रथ और ये रहा सूर्य, मारो जयद्रथ वध। तो प्रकृति को भी वश में किया जा सकता है, प्रकृति को भी कंट्रोल किया जा सकता है, प्रकृति पर भी अधिकार आधिपत्य बनाया जा सकता है, प्रकृति जीत भी बना जा सकता है, प्रकृति से अप्रभावित भी रहा जा सकता है। और यहां जो बोला है परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर, मैटर को भी चेंज किया जा सकता है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाया जा सकता है। क्योंकि जब ये आठ शक्तियों का हम प्रयोग करेंगे तो मैटर में क्या होगा, चेंजेस होगा। चेंजेस किस तल पर होंगे, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ही तो चेंज होता है। आयरन का एटॉमिक नंबर और गोल्ड का एटॉमिक नंबर अलग अलग है, जो चेंज है वो किस में है, एटॉमिक नंबर में है, ऑक्सीजन कहो जो भी, एटॉमिक नंबर के तल पर चेंज हो जाए ये ग्लास तो कंपाउंड चेंज हो जाता है। वैसे ही ये आठ शक्तियां क्या करेगी, मॉलिक्यूलर लेवल पर काम करेगी, एटॉमिक लेवल पर, आणविक तल पर कार्य करेंगी ये सारी शक्तियां। और इस प्रकृति में क्या होगा, बदलाव होगा। प्रकृति जो अशुद्ध हो गई है, धरती क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति धरती, ये जो अग्नि है, ये जो धरती है, इसमें परिवर्तन होगा, क्षिति जल में परिवर्तन होगा, पावक आग में परिवर्तन होगा, गगन आकाश में परिवर्तन होगा, समीर वायु में परिवर्तन होगा, ये समीर बदल जाएगी। तो पांचों ही तत्व परिवर्तन होंगे, किन किन शक्तियों से, अष्ट शक्तियों से। सबसे पहले तो जितनी आत्माओं की पवित्रता बढ़ेगी, सबसे पहले योग बल, पावर ऑफ साइलेंस, पावर ऑफ साइलेंस बाबा मौन को नहीं कहते हैं, तीन शब्द बाबा समानार्थी रूप से प्रयोग करते हैं, पावर ऑफ साइलेंस, योग बल और शांति की शक्ति। पावर ऑफ साइलेंस अर्थात अवाक रहना, मौन रहना, चुप रहना, निरवता, निस्तब्ध, निश्शब्द, चुप्पी, बेआवाज नहीं है। साइलेंस पावर जब प्रयोग किया गया है बाबा ने, उसका ट्रांसलेशन है शांति की शक्ति, और शांति की शक्ति का ट्रांसलेशन पावर ऑफ पीस नहीं है, पीस अलग। जब बाबा शांति की शक्ति कह रहे हैं, इसका अर्थ है पावर ऑफ साइलेंस, इसका अर्थ है योग बल, इसका अर्थ है पावर ऑफ योगा। तो ये चार शब्द समानार्थी है, और जो शांति है वो अलग है, वो पीस, वो जो शांति के लिए बाबा पीस पावर के साथ जब कहा जाता है तब वो योग बल है, और जब आइसोलेटेड शांति शब्द प्रयोग किया गया, शांति सम्मेलन, तो फिर उसका अर्थ पीस है। सारी मुरलियों में, अव्यक्त मुरलियों में इसी तरह से प्रयोग किया गया है पीस। और दूसरा शब्द है मौन, वो अलग है। उसके लिए बाबा कहते हैं मन का मौन और मुख का मौन। उसके लिए समानार्थी शब्द ज्ञान की भाषा में साइलेंस नहीं है, स्पीचलेसनेस कहा जा सकता है, साउंडलेसनेस कहा जा सकता है। तो सबसे पहली जो शक्ति चाहिए, जो बढ़ानी है और जिससे पवित्रता और जिससे प्रकृति का परिवर्तन होगा, वो है पावर ऑफ प्योरिटी, पावर ऑफ साइलेंस। दूसरा है पावर ऑफ प्योरिटी। प्योरिटी का बल आत्माओं का जितना बढ़ेगा उतनी प्रकृति भी प्योर होते जाएगी। तीसरा है पावर ऑफ थॉट, संकल्प की शक्ति। जितने संकल्प शक्तिशाली होंगे वो संकल्प सीधा प्रकृति को प्रभावित करेंगे। हम संकल्प करेंगे ऐसा हो तो वैसा होगा, हम कहेंगे ये होना चाहिए तो होगा, एक हमारे ऊपर एक दूसरों के ऊपर। हम ऑर्डर करेंगे बादलों को, क्या बरसो, धीरे धीरे बरसो तो वो बरसने लगेंगे। ऑर्डर करेंगे स्टॉप तो रुक जाएंगे। वो दिखाया है ना साई बाबा के जीवन कहानी में, कितना सत्य है किसको पता। वो सब बैठे हैं भोजन कर रहे हैं साई बाबा अपने सभी भक्तों के साथ, और अचानक से वो छप्पर हिलने लगता है, भूकंप शायद आ जाता है और गिरने ही वाला है, तो सारे उठ के भागते हैं। वो और उनका एक शिष्य ही खाली बैठता है, वो कहता है रुक जा। वो छप्पर ऐसे आधा आ जाता है, उसको रुका देते हैं, उसको रोक देते हैं। भोजन पूरा होता है बाहर, तब तक तो बाकी तो पहले ही बाहर आ गए। जब इनका भोजन पूरा होता है बाहर आता है, अब कहते हैं अब गिर, पानी हाथ धोते धोते कहते हैं कि अब गिर, वो धड़म से गिरता है। सत्य असत्य की बात नहीं है, बात है प्रकृति को वश में करने की, प्रकृति पर एक्सपेरिमेंट करने की। खाली ये सारे एक्सपेरिमेंट गुप्त हो, प्रकृति पर हम जो भी एक्सपेरिमेंट करें वो सभी गुप्त हो, क्योंकि अगर इसका प्रदर्शन किया तो होना लोप हो जाएगा, गुप्त गुम हो जाएगा। इसके लिए प्रकृति पर हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठंड पर एक्सपेरिमेंट, कोल्ड पर एक्सपेरिमेंट, हीट पर एक्सपेरिमेंट और बारिश पर एक्सपेरिमेंट, बादलों पर, सूरज पर, चांद पर, तारों पर, ग्रहों पर, फिर वनस्पति पर किया है। बताया था डॉक्टर लूथर बर्बैंक, कितने सारे एक्सपेरिमेंट किए उसने, विजार्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर उसको कहते हैं। हॉर्टिकल्चर को क्या कहते हैं हिंदी में, वनस्पति नहीं, जादूगर। किसका जादूगर, हॉर्टिकल्चर का जादूगर कहा जाता है उसे। तो उसने वो कैक्टस, कैक्टस पता है ना हिंदी में क्या कहते हैं उसको, कटीला, वो कांटे वाला जो होता है ना, नागफणी, उसमें खाली कांटे होते हैं और वो रेगिस्तान में होता है, मरुस्थल पर, मरुभूमि पर। उस मरुभूमि पर होने के वजह से उसमें इतनी शक्ति नहीं होती है कि फूलों को भी पानी दे और इसको भी, उसके पत्ते भी हो, उसके फल भी हो, कुछ भी नहीं होता है। जस्ट दैट कैक्टस, स्पाइन, स्पाइनी कैक्टस जिसको कहते हैं। और लूथर बर्बैंक 7 साल तक काम करते रहा, बागवानी, बागवानी का जादूगर, विजार्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर कहा जाता है उसको। उसका एक फोटो भी है, खड़ा है ऐसा, वो 7 साल तक उस कैक्टस के साथ में बात करता है, उस झाड़ के साथ बात करता है। हे कैक्टस, देखो तुम कैसे हो, कोई तुम्हें प्यार नहीं करता पर मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। बहुत बात की उसने, रोज बात की, ऐसे बात की जैसे कि वो जीवंत है। और रिजल्ट में ऐसे कितने सारे उसने नई नई खोजे की। उसमें स्पाइनलेस कैक्टस, द फर्स्ट ह्यूमन कॉन्टैक्ट विथ एनिमल किंगडम, विथ प्लांट किंगडम, पहला जैसे संबंध बना मनुष्य का और प्लांट का, कि उसने कहा और वो पहली बार कैक्टस निकला कि जिसको काटे ही नहीं थे। प्रकृति बदल सकती है तो मनुष्य देह क्यों नहीं, देह भी तो किससे बना है, प्रकृति से ही बना है। सारी बीमारियां संकल्प से भी ठीक की जा सकती है अगर कोई वैसे संकल्प करे तो, परंतु अधीनता है भोजन और बाकी सब चीजों पे, इसलिए वो नहीं हो पाता है। इसलिए इतनी सारी दवाइयां और बीमारियां सब कुछ है संसार में, परंतु संकल्प से। पुराने जमाने में क्या था, कैसे ठीक करते थे वो लोग, झाड़ फूक और वो सब से कैसे ठीक हो जाते थे लोग। ऐसा तो कहीं कहीं नहीं सकता है कोई, ऐसा नहीं कह सकता है कि ये पैथी से ठीक नहीं हुआ, हर एक पैथी ने सब ठीक किया है, जबकि एलोपैथी का दावा है कि बाकी सब बोगस है, सब मूर्ख लोग है, क्योंकि साइंस बेस्ड नहीं है, सूडो साइंस है सब कुछ, सूडो साइंस, सब प्लेसिबो है। पानी का इंजेक्शन दो पेशेंट को, बताओ पेन किलर दिया है ठीक होता है, ये है सूडो साइंस। प्लेसिबो, फेथ, पावर ऑफ फेथ, पावर ऑफ हीलिंग और वो सारा जो है। एलोपैथी ये सबको नहीं मानता, एलोपैथी कहता है दिखाओ माइक्रोस्कोपिक और वो सब तो मानेंगे, बाकी ये तो सब फालतू है, ऐसे ही कमाई कर रहे हैं बैठकर। तो प्रकृति का परिवर्तन, पावर ऑफ साइलेंस, पावर ऑफ प्यूरिटी, पावर ऑफ थॉट, चौथा पावर ऑफ गुड विशेस एंड प्योर फीलिंग, अर्थात शुभ भावना और शुभ कामना की शक्ति। हम अपनी कैसी भावना रखते हैं, बुरी भावना रखो तो बुरा होगा, अच्छी भावना रखो तो अच्छा होगा, दोनों ही काम करेगा। भावनाओं के आधार पर वो भी बताया था, वो झाड़ गालियां दो बैठकर, सूख जा सूख जा सूख जा सूख जाता है, झाड़ों पर भी असर है, पानी पर भी असर है, वो भी ग्रहण करता है भावनाओं को। गालियां देते रहो किसी को तो असर तो होता है, प्यार बहुत करते रहो तो भी बहुत असर होता है, चाहे जानवर हो, चाहे वनस्पति हो, प्रकृति हो, मनुष्य तो है ही है, कोई भी। जानवर को भी प्यार करो तो कितना उसके अंदर चेंजेस होते हैं। तो शुभ भावना, शुभ कामना से भी प्रकृति का परिवर्तन हो सकता है। पावर ऑफ गुड विशेस एंड प्योर फीलिंग। फिफ्थ, पावर ऑफ वृत्ति, पावर ऑफ वृत्ति, वृत्ति की शक्ति। संकल्प जितने शक्तिशाली उतनी वृत्ति शक्तिशाली, वृत्ति से वायुमंडल। वृत्ति में क्या है, पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी है, वृत्ति में क्या है, व्यर्थ है, समर्थ है, निर्व्यर्थ, निर्मोही और निर्विकल्प, तीन शब्दों का प्रयोग किया था। ये तीन शब्द है, उपराम अर्थात एवर रेडी, अर्थात हर घड़ी अंतिम, समझो। एवर रेडी की परिभाषा में तीन शब्द प्रयोग किए थे कल। तो वृत्ति में पॉजिटिविटी, वृत्ति में समर्थता, पावर ऑफ वृत्ति। दूसरा पावर ऑफ सकाश, पावर ऑफ सकाश अर्थात वाइब्रेशंस, अर्थात प्रकंपन, अर्थात किरणें, अर्थात जो किरणें विकीर्ण हम कर रहे हैं, रेडिएट कर रहे हैं, वो भी असर करते हैं। पावर ऑफ सकाश, जिस जिसको हम जैसी जैसी सकाश देंगे वो उस तक पहुंचेगी, वाइब्रेशंस जाएंगे। और स्निफर डॉग होता है ना, स्निफर, स्निफर डॉग पता है ना, पुलिस के पास होता है स्निफर, स्निफ करना अर्थात सूंघना, स्कॉट, वो स्निफर डॉग कहते हैं उसको, सूंघता है वो। चोर आता है, अगर यहाँ चोर आया, इसमें अगर किताब चोरी करके गया और थोड़ा ही समय हुआ है, स्निफर डॉग घूमेगा सब जगह और उसको बराबर पकड़ेगा। एक चोर निकृष्ट कर्म कर रहा है, अपने वाइब्रेशंस छोड़ कर जाता है, ठीक है। एक चोर निकृष्ट कर्म, सबसे शूद्र कर्म कर रहा है और अपने वाइब्रेशंस छोड़ जाता है, तो संसार की महान आत्माएं जब सर्वश्रेष्ठ संकल्प के साथ बैठेगी और सर्वश्रेष्ठ वाइब्रेशंस फैलाएगी, तो क्या वो नहीं जाएगी? वो नहीं जाएंगे? जब चोर के वाइब्रेशंस छोड़ जाता है, तो हम कौन से वाइब्रेशंस छोड़ेंगे? अगर हम संकल्प के साथ करते हैं तो पावर ऑफ सकाश, प्रकृति के पांच तत्वों को सुबह और शाम दो बार सकाश देनी है, सुबह और शाम, टाइम आप भी डिसाइड करो कैसे देनी है। अलग अलग तलों पर दी जा सकती है, यही देह में बैठते हुए मुझसे किरणें फैल रही है, सूक्ष्म वतन में बैठते हुए वहां से नीचे किरणें फैलाना, परम धाम में बैठकर सारी सृष्टि को किरणें देना, या फिर फरिश्ता रूप धारण करके अलग अलग स्थानों पर जाना, आकाश में जाना, हवा में जाना, धरती पर जाना, पानी के ऊपर जाना, अग्नि के ऊपर जाना, फिर सकाश देना, पानी के अंदर ऊपर नीचे जहां जाना है वहां जाओ, परंतु दो अलग 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 खंडों के ऊपर जाना, पांच महासागर के ऊपर, पांच महाखंडों के ऊपर जाना, वहां सकाश देना, अलग अलग रीति से, चाहे फरिश्ता रूप में, चाहे परम धाम से, चाहे सूक्ष्म वतन में ही बैठकर, या फिर नीचे आकर, या फिर इसी तन में बैठकर, या फिर वो पांचों तत्वों को देव रूप में देखना और फिर सकाश देना, ब्राह्मण रूप में देखना फिर सकाश देना, किसी भी रूप में कैसे भी सकाश दी जा सकती है। ग्लोब के ऊपर, ग्लोब को सिर पर लेके घूमना नया मेथड है, ठीक। हाथ में ले लेना धरती को, ग्लोब को, और उसको सकाश, हाथ धरती घूम रही है, नहीं तो हाँ धरती का फोटो है, हाथ में लिया और सकाश, तो कैसे भी जैसे देना चाहो वैसा दे सकते हो। कल्प वृक्ष के नीचे बैठो, वहां से भी दिया जा सकता है, कहीं से भी। तो पांचों तत्वों को सकाश, तो पावर ऑफ सकाश, फिर पावर ऑफ दृष्टि, दृष्टि से हमारी दृष्टि में बहुत पावर है, हम दृष्टि देंगे और चीजें बदलेगी। वो दिखाया एक मरीज मिर्गी का दौरा पड़ रहा है और जीसस क्राइस्ट को बुलाते हैं, मालिक इसको देखो क्या हो रहा है, तो वो जाता है, एक व्यक्ति है जिसको मिर्गी का दौरा पड़ रहा है, भयंकर बेहोश है और हिल रहा है, फेस आ रहा है, आंखें ऊपर की हुई है और उसके पिताजी बहुत रो रहे हैं। वो जाता है, खाली देखता है, कुछ भी नहीं करता है, खाली देखता है, वो शांत हो जाता है। दृष्टि, केवल दृष्टि, पावर ऑफ दृष्टि। टॉपिक अच्छा है वैसे, ये इस पर नहीं बोला ना किसी, दृष्टि ऑफ गॉड बोला है, पावर ऑफ दृष्टि। श्रद्धा बहन तैयार करके रखो, पावर ऑफ, हाँ ठीक है, पावर ऑफ दृष्टि। तो दृष्टि की शक्ति, दृष्टि से क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सी सृष्टियां बदल सकती है दृष्टि से, केवल दृष्टि देने मात्र से। दृष्टि दी और परिवर्तन, देखा और परिवर्तन, और दृष्टि कैसे होनी चाहिए और क्या क्या बदलेगी, तो पावर ऑफ दृष्टि। और लास्ट पावर ऑफ स्पीच, बोल, किस गहराई से निकलने चाहिए वो बोल। तो ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, प्रकृति को मुख का कोर्स तो नहीं कराएंगे ना, व्यक्तियों को तो कोर्स करा देते हो, लेकिन प्रकृति को कैसे बदलेंगे, वाणी से या शांति की शक्ति से, योग बल से बदलेंगे ना। ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड, तो योग में जब बैठते हो तो क्या अनुभव करते हो, शांति का संकल्प भी जब शांत हो जाते हैं, एक ही संकल्प बाप और आप, इसी को ही योग कहते हैं। अगर और भी संकल्प चलते रहेंगे तो उसको योग नहीं कहेंगे, योग का मनन कहेंगे, ज्ञान का मनन कहेंगे। तो जब पावरफुल योग में बैठते हो तो संकल्प भी शांत हो जाते हैं सिवाय एक बाप और आप, बाप के मिलन की अनुभूति के सिवा और सब संकल्प समा जाते हैं, ऐसा अनुभव है ना। समाने की शक्ति है या विस्तार करने की शक्ति ज्यादा है। कई ऐसा कहते हैं कि जब हम याद में बैठते हैं तो और संकल्प बहुत चलते हैं, इसको क्या कहेंगे, समाने की शक्ति कम और विस्तार करने की शक्ति ज्यादा। लेकिन दोनों शक्ति चाहिए, जब चाहे जहां चाहे विस्तार में आना चाहे विस्तार में आए और समेटना चाहे तो समाने की शक्ति सेकंड में यूज कर सके, इसको कहा जाता है मास्टर सर्वशक्तिवान। योग और चिंतन, योग और मनन, योग और मंथन में क्या अंतर है? एक तरफ है योग, एक तरफ है मनन, इसमें क्या अंतर है? 10 पॉइंट्स मीना सिस्टर। योग है विस्तार का सार, पहला पॉइंट है योग है विस्तार को सार करना, मनन है सार का विस्तार करना। एक टॉपिक दिया है हुक्मी हुकुम चलाई रहा, इसमें सब आ गया, परंतु टॉपिक है तो अब इसका विस्तार करना, यह है चिंतन। टॉपिक है मिरुआ मौत मल्लुक का शिकार, टॉपिक है अंतमति सो गति, ये सार है, अब इस सार का विस्तार करना। जैसे आज की मुरली में प्रभु का भाना, आज की मुरली में प्रभु का भाना मीठा करके भोगना है, यह है सार। प्रभु का भाना मीठा करके भोगना है, प्रभु का भाना अर्थात परमात्मा प्लेट में, गॉड्स प्लेट में जो कुछ भी मिलता है उसे प्रेम से स्वीकार करो तो वो मीठा हो जाएगा। प्रभु का भाना मीठा करके भोगना है आज की साकार मुरली मम्मा की वाणी। दुर्वागिन नहीं बनना है, विधवा, एक है सुहागिन एक है दुर्वागिन। आज की मुरली में दुर्वागिन, दुर्वागिन विधवा। तो योग है विस्तार को सार करना, ज्ञान मनन है सार को विस्तार करना, एक। दूसरा, योग है फुल स्टॉप, मनन है क्वेश्चन मार्क। मनन अर्थात ये क्यों, ये कैसे, ये कब, ये कहां, ये किसका, हाउ, व्हेन, वेयर, विच, व्हाई, सारे प्रश्न ही प्रश्न है। मनन के लिए प्रश्न चाहिए, वो वाले प्रश्न नहीं, संशय वाले, वो स्टेज तो क्रॉस हो गई। अब ज्ञान को समझने के लिए प्रश्न चाहिए, उगारने के लिए प्रश्न चाहिए, चर्निंग के लिए प्रश्न चाहिए। तो योग है फुल स्टॉप, मनन है क्वेश्चन मार्क। तीसरा, योग है स्वयं को आत्मा समझ बाप को याद करना, मनन है स्वयं को आत्मा समझ बाप के ज्ञान को याद करना। चौथा, योग, योग है उसका विस्तार बताओ, वो बोल तो दिया, योग है इसेंस, इसेंस अर्थात सार, वो पहले इसमें आ गया वैसे तो, क्योंकि वो इंग्लिश हो गया उसका। और ज्ञान है सेंस, और योग है, योग है बीज, चिंतन है वृक्ष, ओके ये भी हो गया। और बोलो, योग है मनन, मनन ज्ञान की नहीं बात चल रही, मनन की बात चल रही। योग मनन रूहानी नहीं है, वो तो योग में भी रूहानी होती है। योग है बाप से सर्व संबंधों का अनुभव करना, मनन है बाप से सर्व योग है बाप के सर्व संबंधों का विस्तार, और योग है योग से विकर्म विनाश होते हैं, मनन से व्यर्थ विनाश होता है। एक से विकर्म विनाश, दूसरे से व्यर्थ विनाश। योग से स्थिति शक्तिशाली है, बनती है। योग से वातावरण शक्तिशाली बनता है, मनन से स्थिति शक्तिशाली बनती है। और नहीं, ज्ञान और योग की चर्चा नहीं चल रही है, योग और मनन की। मनन दूसरा है, ज्ञान दूसरा है। मनन है सीढ़ी और योग है मंजिल। योग से आत्मा शक्तिशाली बनती है, आत्मा शक्तिशाली, योग बल। मनन से मन, बुद्धि, स्थिति सब शक्तिशाली बनता है। योग से आत्मा, योग को आत्मा के साथ जोड़ो, और मनन से मन, और योग और मनन में अंतर। योग है निरसंकल्प, खाली संकल्प ही बच जाता है। कि यज्ञ के लिए संकल्प चलते वो भी निरसंकल्प है माना, परंतु यहाँ योग अर्थात कम से कम संकल्प, और मनन अर्थात शुद्ध संकल्प। मनन अर्थात शुद्ध संकल्प, योग अर्थात निरसंकल्प। और पीछे से प्रकाश भाई, एक एक शब्द में बताओ परिभाषा। एक लाइन होनी चाहिए या एक वर्ड होना चाहिए डिफरेंस में? बहुत सारा विस्तार नहीं। योग अर्थात और मनन अर्थात। कमलेश भाई, योग अर्थात और योग अर्थात प्राप्ति। योग अर्थात उसको जरा ठीक करो। योग अर्थात न कुछ भी नहीं डालो, बहुत टू द पॉइंट प्रिसाइज उत्तर चाहिए, एग्जैक्ट टू द पॉइंट, जिसमें कोई फेर बदल और चेंजेस ना हो सके। ऐसा सर्वमान्य, सर्वमान्य और टू द पॉइंट उत्तर। नहीं, वो नहीं, हमने अभी एक्सेप्ट नहीं किया उसको, वो छोड़ दिया है पब्लिक के लिए। योग अर्थात, योग अर्थात, चलो योग की सारी बातें याद करो जो बाबा योग के लिए। योग से क्या क्या प्राप्ति होती है, योग से क्या होता है? अनुभूति। योग का लक्ष्य है अनुभूति, मनन का लक्ष्य है अनुभवी। योग अर्थात क्या और मनन अर्थात क्या? योग से क्या प्राप्ति है, मनन से क्या? योग अर्थात शब्दों से नहीं खेलना है, एग्जैक्ट चाहिए, अनुभूति नहीं। योग अर्थात, योग अर्थात, योग में क्या किया जाता है? देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, यह है योग। और मनन अर्थात सतत जिज्ञासा। और योग का आधार है प्रभु प्रेम, मनन का आधार है ज्ञान प्रेम। मनन कब करेंगे? ज्ञान प्रेम जब होगा तब। ज्ञान से प्रीति जब होगी तो योग का आधार मुरलीधर से प्रेम, और ज्ञान मनन का आधार मुरली से प्रेम, ऐसे पॉइंट चाहिए। और मनन और योग में अंतर, योग अर्थात फुल स्टॉप बोल दिया हमने, वो प्रश्न ये फुल स्टॉप। और योग अर्थात, योग अर्थात, चलो इसके ऊपर होमवर्क सबको, कितने बताए फिर से रिवाइज करो, क्योंकि एग्जैक्ट चाहिए हमको। सबसे पहला, नहीं बहुत सारे नहीं हुए, बहुत कम हुए। सबसे पहला योग अर्थात विस्तार को सार में लाना, और मनन अर्थात सार को विस्तार करना, एक। दूसरा योग अर्थात फुल स्टॉप, मनन अर्थात क्वेश्चन मार्क। तीसरा योग, नहीं क्वेश्चन मार्क ही है मनन, क्वेश्चन मार्क, मनन में क्या चाहिए, मनन कब कर सकते हैं, मनन कैसे होता है, चिंतन कैसे होता है, प्रश्न चाहिए, प्रश्न चाहिए मनन में, ये क्यों, ये कैसा, कब, कहा, किसने, क्यों, सारे प्रश्न है। तीसरा, योग अर्थात योग से क्या विनाश होता है, विकर्म, मनन से विनाश होते हैं व्यर्थ। चौथा, योग का आधार मुरलीधर से प्यार, और मनन का आधार मुरली से प्यार। पांचवा, योग का आधार नहीं, योग अर्थात अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, मनन अर्थात अपने को आत्मा समझ बाप के ज्ञान को याद करना। पांच, छठवा, योग अर्थात सर्व संबंधों का बाप से अनुभव, और मनन अर्थात सर्व संबंधों का विस्तार, ये हो गया छठवा। सातवा, योग अर्थात मनन अर्थात स्वदर्शन चक्र, और योग अर्थात फिर स्वदर्शन और परमात्मा दर्शन, ना 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 ना, ना। नॉट एक्सेप्टेड। हाँ, योग अर्थात बीज, मनन अर्थात वृक्ष, मनन अर्थात वृक्ष, सात हो गए। आठवा हो गया वो, योग से आत्मा शक्तिशाली बनती है, मनन से मन शक्तिशाली बनता है, या चिंतन शक्तिशाली बनता है, या तो हाँ, फिर योग से स्थिति वातावरण शक्तिशाली बनता है, मनन से स्थिति शक्तिशाली बनती है, ये हो गया नौवा। और दसवा एक बताओ अभी लास्ट, योग है निरसंकल्प और मनन है शुद्ध संकल्प, ये हो गए दस। ओम शांति।